लोगों ने रसायन के श्लोकों में से अंतिम श्लोक जैत जन निवास हो देव की जन्म पाप है बुधवार परिषद प्रदर्शन धारणा यहां तक की व्याख्या कर चुके हैं सनातन गोस्वामी। अब पूजाओं के द्वारा रक्षा की थी, तात्पर्य क्या, धर्म की स्थापना की थी, दुष्टों का दमन किया था, उसमें पांडवों को भी पूजा करता है, उनके माध्यम से दुष्टों का संघार किया, इसमें जरासंध शिशुपाल इत्यादि सबका हुआ। अब कहते हैं और एक विशेषण, फिर चार बिजी नग्ना वे ब्रिजिंग माने होता है दुख क्लेश वे प्रकट हो करके स्वयं कृष्ण फावर जंगम सबके दुखों का विनाश किया था, दुखों का हरण किया था। उसमें से पहले सर्वत्र प्रेम भक्ति प्रदान किया था, यहाँ तक कि लताओं को गुलों को भी उन्होंने जो प्रेम दिया और किसी रूप में नहीं दिया, यह परम उदारता है। ठीक वृंदावन के अंतर्गत तरु लता गुल्म चर कीट आदि चलने वाले प्राणी समूह अधिकार आदि कोनो हेतु अपेक्षा ना करिया, किसी हेतु की अपेक्षा ना कर, किसी कारण की अपेक्षा ना कर, सबके दुखों का उन्होंने नाश पूर्वक अपनी प्रेम भक्ति प्रदान में जिन्होंने प्रेम भक्ति इत्यादि प्रदान किया है, ऐसे कृष्ण जय युक्त हों। अथवा मुक्ति चाहने वाले जिस प्रकार स्वर्ग सुख आदि को विघ्न समझते हैं, जिस प्रकार मुक्ति चाहने वाले लोग स्वर्ग आदि इत्यादि सुखों को उसका विरोधी मानकर कभी स्वर्ग सुख इत्यादि नहीं चाहते हैं, ये बाधा है। उसी प्रकार भक्तों के भी मोक्ष सुख को बाधा वो समझते हैं, मोक्ष सुख को भक्ति में बाधा समझते हैं, इसलिए भगवान के दिए जाने पर भी मुक्ति को ये लोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए अपने जन अपने भक्तों के मोक्ष इत्यादि अखिल दुख, मोक्ष भी दुख है, ऐसे दुखों को भी नाश किया करते हैं। विजय नग्ना मुक्ति के सुख को भी विनाश करने वाले हैं, शुद्ध प्रेम भक्ति देने वाले, अर्थात कहता है किंतु हमारा वो अंधकार हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है जैसे ऐसे हो, उसे नहीं, ये बाधा बनता है। जति उस समय प्रकट काल में, लीला के प्रकट काल में अपनी सर्वत्र प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए त्रिभुवनस्थ त्रिभुवन में लोगों के संसार का दुख का नाश स्वयं हो जाता है। प्रभु के प्रकट काल से ही, प्रकट होने से ही सबके दुख दूर हो जाते हैं। इस विषय में दृष्टांत दे रहे हैं। रसोई बनाने के लिए चूल्हे में अग्नि है, उस जब अग्नि जलती है उसमें लकड़ी इत्यादि दी जाती है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और शीत इत्यादि भी निवारण हो जाता है अपने आप। उसी प्रकार से भक्ति के अवान्तर फल रूप से ही साधारण व्यक्तियों के संसार दुख का नाश अपने आप हो जाता है प्रभु के प्रकट होने पर। और उनके भक्ति जो पारायण व्यक्ति हैं, जो भक्ति करते हैं, उस समय भी उन भक्तों के
भक्त महात्माओं के संबंध में विचित्र महासिद्धि वक्त आगत मोक्ष इत्यादि भी भक्ति में बाधक है ऐसा समझ करके मुक्ति को भी दूर कर देने, मुक्ति के सुख को भी दूर कर देने वाले हैं ऐसे प्रभु। तथापि इतना होने पर भी गोपालन इत्यादि लीलाओं के द्वारा वृंदावन विशेष ब्रजभूमि में वहां के विशेष विशेष स्थानों में जब भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते समय प्रेम दृष्टि से देखते हैं चारों तरफ में, तो गोकुल क्रीड़ा मध्य ये विशेष निर्दिष्ट है। दुर्भिर्शन फिर चल दिग्ना सुष्म तुषी मुखे न ब्रजपुर बनितान बर्धन काम सुष्म श्री मुखे न तत् मंद मंद मुस्काराहट के साथ में जो उनका मुखारविंद है ईशत हास्य युक्त मुख में ब्रज वनिताओं मथुरा की वनिताओं और द्वारका की वनिताओं के कामदेव को वर्धन करने वाले हैं। कामदेव माने प्रेम, प्रेम को वर्धन करने वाले हैं। श्री कृष्ण स्वयं उसी रूप में वहां पर विराजमान हो, वो कृष्ण जय युक्त हो। यहाँ पर ब्रज को भी ब्रजपुरी कहते हैं, इसलिए ब्रजपुर बनिता नाम कहा गया। एक तो मथुरापुरी, द्वारकापुरी और इधर में ब्रजपुरी, ब्रजपुर ब्रज बनिता नाम वर्धयन कामदेव। बनिता शब्द से अनुरागवती, ब्रज की, मथुरा की, द्वारका की कृष्ण के प्रति परम अनुरागवती के काम को वर्धन करने के लिए कहा गया है यहाँ। और ब्रज सुंदरियों के श्रेष्ठत्व सूचना जन, और इनमें भी तीनों में ब्रज की वनिताओं की श्रेष्ठता को संपादन करने के लिए यहाँ पर स्पेशल रूप में लिख दिया गया है ब्रजपुर वनिता नाम। यहाँ पर ब्रजपुर वनिता हृदयस्थ काम, ब्रजपुर के वनिताओं के हृदय में जो काम है, काम तो है किंतु बंशी इत्यादि के द्वारा अपने स्मित हर्ष इत्यादि के द्वारा उनके काम को वर्धन करने वाले हैं। सही काम के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण की जय हो।
So yesterday you heard the stories of the second line of this verse, Yadavara Parishatsva Guru Vyasya Adharma, how Krishna uses his pastime to protect the Yadus by destroying all the demons such as Jarasandha, Shishupala, Dantavakra, and others. Either through trusting himself or through his own arms in the form of his intimate associates such as the Pandavas. So now Srila Gurudev, moving on to the third line of the verse, Stirachara Vrijina Vina Susmita Srimukhena. So here, Stira means the living entities who don't move, such as grass, bushes, trees, creepers. And Chara means moving living entities, such as all animals and insects, and also human beings. So Stira Chara, all moving and non-moving living entities. Vrijina Vina. Na means it destroys. What? Vrijina. Vrijin means look, all suffering, flesh, all types of distress. So Sri Krishna, he removes all types of distress from moving and non-moving living entities. How? Susmita Shimokena. By the Susmita, the very beautiful smiling Shimokena of his attractive lotus face. This is the general meaning of the verse. Now Srila Gurudev is explaining in detail. It means that when Krishna performed his pastimes in this world, he gave rain to all, even to grass, creepers, trees, flowers in Vrindavan. He did not neglect anyone. So, because he did not neglect anyone, therefore Jayati Jamini Jayati. All glories to that Krishna, who so mercifully, in his Bhajalila, did not neglect anyone, Stirachara, moving and non-moving entities, he took away the distress of all. So, what does it mean to take away distress? Some people, they desire elevation to Swargaloka, the heavenly planets. Some people desire mukti, liberation. But for those who are devotees, the desire mukti and mukti, they are obstacles in the path of spiritual life. If anyone will give these things, if Krishna will give these things to anyone, any pure devotee, what will they say? Diyamana nagranati vinama sevanadana. The pure devotees will not accept liberation, even if it's offered to them. So Krishna, he does not take away distress and give happiness by bestowing liberation. What did he do? He's distributing grain. So Srila Sanatana Goswami Pad is giving an example that if you want to cook something, then the prominent thing is you want to make some preparation. But in the act of cooking, you have to light a fire in the stove. Bring firewood and light a fire. So your intention is to cook and taste something. But in the act of cooking, lighting the fire, what will happen? All darkness will automatically be dispelled by that fire. And all coldness will go away when that fire is lit. This is automatic. It happens automatically. There's nothing else to do. So similarly, when Krishna used to do gocharan, go for grazing cows, then he would wander throughout all the very special places of Vrajamandal. And by smiling, and by playing on his flute, and by lovingly glancing here and there, he would bestow prem upon all the living entities. And automatically, simultaneously, all vrijina, all types of distress, they would be removed. So here, Susmita Shimokena, by his very beautiful smiling, by his flute playing, then Raja Pura Vanitana Vadayam Kamadeva. Srila Gurudev is touching the last line. Raja Pura Vanita. Raj means Raj, Rajamandra. Pura means the town. Which town? There are three places. Raj itself is one Rajapur, then Mathura Puri, and then Dwarka Puri. The word Vanita means a young lady, but here it specifically means Parama Anuragavati, those young ladies of Raj, of Mathura, and of Dwarka, who are filled with the highest anurag, deep, deep love for Sri Krishna. So, Rajapura Vanita, what happens to them? Vadayan Kamadeva. By his smiling, by his good name in Raja, by his loving glances in Mathura and Dwarka, it does the pardon, that is increasing the influence of Kamadeva. Here, Kam does not mean lust. Kam means Vishuddha brain, completely pure love. So, here, three places are mentioned. Raja Pura Vanita. Pura means Rajapur, Dwarkapuri, and Mathurapuri. But Dwarka and Mathura have not been mentioned specifically. Only Pura is there. But Raja has been directly mentioned. So Srila Sanatana Goswami passes. The significance of this is of those young ladies who are Parama Anuradhavati, the gopis of Raja, are far superior to the queens of Dwarka and the Mathura Ramanis. And therefore, they have been given special mention in this verse by Srila Shukadeva Goswami, Rajapura Vanita. Vadiyam Kamadev means Krishna is himself like the embodiment of Kamadev and increasing their frame. So Vadiyam increasing means that they already have frame. All these personalities, they have frame. But when Krishna smiles, he takes his look, and when he glances upon them, then this increases the ocean of their prayer.
Kamadeva. Kamadeva ki vyakhya kar rahe hain. कामान स्वाभिलाषान दिव्यति प्रकाशेत अथवा कामेन स्वाभिलाषेन दिव्यति क्रीडति यः स कामदेव. अर्थात जो अपने सुख को अपने सुख के लिए अपने सुख को प्रकट करने के लिए जावती अभिलाष भक्त के हृदय में प्रकाश करते, स्वयं अपने आनंद प्राप्ति के लिए भक्तों के हृदय में ऐसी भावना प्रकट करते हैं, प्रेरणा करते हैं कि वैसे ही कृष्ण के पास में आकर के उनकी सेवा करते हैं, जिससे कृष्ण की अखिल अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं. अथवा जो निजानंदे विभोर होकर के अपने आनंद में स्व अपने आनंद में विभोर होकर शिक्षा में क्रीड़ा करते हैं, वे हैं काम देव माने दिव्यति क्रीड़ति. तो भक्तों के साथ में क्रीड़ा भी करते हैं. अतः गोपियों के काम को वर्धन करने के लिए वे संसार के प्राकृत काम को भी जय किया करते हैं. वे रासलीला में समस्त गोपियों को अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आवाहन किया. आने पर उनके हृदय में काम का वर्धन किया, प्रेम का वर्धन किया. उसमें प्राकृत काम को भी जय करने वाली वो लीला है, जिसमें ब्रह्मा इत्यादि बच नहीं सके, जिस कामदेव से शंकर आदि भी नहीं बच सके. और कृष्ण ने गोपियों के आते ही उनको घर जाने के लिए परामर्श दिया. यह भी नहीं, राधिका जी के साथ रहते हुए भी वे अंतर ध्यान हो गए. इसलिए वो स्वयं आत्माराम आत्मा काम भी हैं, आत्मा रमण करने वाले हैं। ऐसे प्राकृत काम को भी दूर कर अप्राकृत कृष्ण कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कराते। जो लोग प्रेम से भगवान की रासलीला संबंधी कथाओं का श्रवण करते हैं, श्रुणोति अथ वर्णय दिज वर्णन करते हैं, अपने काव्य में भी जो वर्णन करते हैं, बने तिज भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य काम, पहले प्रेम होगा काम कृष्ण के प्रति और उसके बाद में जागृति काम का विनाश हो जाए। जितना ही प्रेम आएगा हृदय में अप्राकृत काम आता जाएगा, अप्राकृत काम सब भंग हो जाएंगे। विशेषतः मोक्ष के ऊपर में अतिशय शोभायमान रहने के कारण देव शब्द भी हुआ। देव मैंने यहां पर कहते हैं मोक्ष के ऊपर में स्थित है, इसलिए देव शब्द यहां कहा गया। सार तात्पर्य यह है कि काम सर्वार्थ घातक रूप में प्रसिद्ध है। काम जितनी बुराइयां हैं उनमें सब गुण रहते हुए भी यदि काम प्राकृत काम हुआ लोक परलोक से उचित हो जाता, इसे तो समझना चाहिए। तो ऐसा काम किंतु कृष्ण की भक्ति होने से यदि वह सिंसियर रहे तो ये काम भी दूर हो जाएगा। तो सर्वार्थ घातक रूप में प्रसिद्ध है काम, वही काम गोपियों के हृदय में प्रेम कहलाता है। संसार में बुराइयों की जड़ है काम, काम माने भोग वासना स्त्री संग लिप्सा, किंतु भगवान की लीला कथाओं के द्वारा या गोपियों के हृदय में के संबंध में वही काम प्रेम कहलाता है। किंतु कृष्ण के क्यों, क्योंकि कृष्ण के प्रति वो लागू रहता है और वो संसार ध्वंस का कारण बन जाता है। संसार माने संसारिक आसक्तियों के ध्वंस का कारण बन, अर्थात श्री कृष्ण चरणारविंद वशीकरण द्वारा वही प्रेम काम के नाम से अभिहित होता है। कृष्ण को भी वशीभूत कर देता है, जो परम ब्रह्म है उनको भी प्रेम से वशीभूत कर देता है। जैसे गोपियों ने कृष्ण को प्रेम से वशीभूत कर दिया, काम से वशीभूत कर दिया। हमारे परीक्षित महाराज जी को संशय हुआ, गोपियों में तो कृष्ण में जार बुद्धि थी, भगवान की तो बुद्धि नहीं थी, और ये बहुत ही संसार में निंदनीय है, घृणित है, तो अभी वो कृष्ण को कैसे प्राप्त हो गई? उक्त पुरस्तात या कह दिया गया, मैंने पहले कह दिया, कुछ क्रोधित हो गए, हमारे वचन में विश्वास नहीं हुआ। यदि कोई द्वेष भाव से शत्रु भाव से भगवान का संबंध यदि किसी के अंदर में भगवान के प्रति शत्रुता का भाव है, जैसे कंस शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि थे, तो क्या किया? उनको गति दी और फिर गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम भाव से जो अपना सब कुछ अर्पण कर रही हैं, उनकी सदगति नहीं होगी? पहले कह दिया, काम से क्रोध से भय से प्रेम से भक्ति से संबंध से, जैसे भी कृष्ण के साथ में हो संबंध, वो संसार से उत्तीर्ण करके कृष्ण प्रेम को देने वाला है। इसलिए यहां कहते हैं कि वही प्रेम वही काम कृष्ण को वशीभूत कर देता है। मुक्ति और भक्ति, भक्ति का भी फल स्वरूप है, मुक्ति का भी नारायण के पास में जो चतुर्धा मुक्ति होती है उनका भी मूल उद्देश्य कृष्ण के प्रति प्रीति है, अनुराग है। यही काम प्रतिक्षण नूतन होते नूतन भैया बलिया चरम सीमा प्राप्त कृष्ण के प्रकट काल में या गोपियों का अनुराग या ब्रजवासियों का अनुराग नित्य नूतन नित्य नवीन होता जाता है। अर्थात कृष्ण ही गोपीगण के हृदय में काम के देवता के रूप में प्रकट होते हैं। गोपियों के हृदय में काम क्या है, वो कृष्ण का स्वरूप। अन्यत्र काम रूप में जो कार्य देखा जाता है उनके हृदय में कृष्ण ही वह कार्य करते हैं, कृष्ण ही उनके हृदय में काम का वर्धन इत्यादि सब कुछ वही करते हैं। गोपियों के संबंध में प्राकृत काम का कोई लेश नहीं। इस प्रकार काम रूपी कृष्ण ही सर्वदा काम की उद्दीपना कर या जयजुक्त हो रहे हैं, इसलिए कृष्ण ही उनके हृदय में काम का रूप धारण करके और उनके काम को उद्दीप्त कर रहे हैं अपने प्रति, क्योंकि वे आनंद स्वरूप है, निर्वृत्ति आनंद को देने वाले। बस ये सुडक्ष में क्या समाचार ठीक है,
आशीर्वाद
दे रहे हैं।
It is playing the music of the word Kamade, Krishna's Kamade. What is it name?
Marami Kaljan, Mangalam Bhav.
There means
Guru,
Swamilas, Divyati, Vidati. He manifests his own very sweet pastimes. And he plays with his devotees. By his pastimes, he manifests his own ananda, his own happiness. And as Kamdev in the heart of his devotees, he inspires them. Now, whatever desire Krishna has, whatever he wants to do, whatever desire he has to be fulfilled, as Kamdev in the hearts of the devotees, he inspires those devotees to render that very particular service that will give him ananda. So in this way he's grounded. Krishna is Dev because he plays with his devotees. By performing this lila, of seems like Kram lila, but actually what is it? Transcendental love. And this lila is the Kram Vijay lila. That means it completely defeats the material attachment, material lust. There's no material attachment in this. When Krishna performed Rasa lila, he told the gopis and their Kram, their prayer was increased. Krishna himself is Atmaram, Aptakam, is self-satisfied. He disappeared from all gopis and afterwards he also disappeared from Srimati Radhika. So on the basis of this, it is understood that Krishna, he has no material Kam. Therefore, those who hear this lila, it will destroy their material lust and attachment. When the living entity hears this lila, he is praying. His calm is awakened, and it's this calm itself which destroys all lust. Therefore, in Srimad Bhagavatam, it states, Bhakti Param Bhagavati Pratilabhya Kamam, means that by hearing these sweet lilas of Krishna in Vrindavan, first calm, that means transcendental praying, enters into the heart of the living entity. And the entrance of this love into his heart causes the complete destruction of the action of material karma. So this karma, this brain, is so full of joy that it defeats even the happiness of liberation. The general meaning of the word karma is bhogvasana, the desire to enjoy material happiness. And this is especially characterized by Stri Sangha, the association between male and female. So, but gopis, they apply their karma to Krishna. So when karma is applied to Krishna, then it is called prema, it is transcendental love. This prema is so powerful, it controls even Parabrahma, the Supreme Absolute Truth. When Prishna Maharaj was hearing this lila, a doubt came in his mind. He thought to himself, and he said to Shukadeva Swami, the gopis, they have come to Krishna, this is true. They go to meet with Krishna, this is true. But they don't have Bhagavad Buddhi. That means they don't have the conception that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. What is their buddhi, their conception? They have Jara Buddhi. That means they think that Krishna is their paramo lover. They think that I have left my husband and am meeting with one ordinary boy, the son of Nandamaj, and he is my illegal relationship. It is called Jara Buddhi. They never thought that he was God. So in this world, Jara Buddhi is what? This paramo mood is abominable, rejectable, despicable, it is despised by everyone. So, Prishit Maharaj raised this doubt. If the gopis have adopted this mood, which is despised by everyone, how is it that they attain Krishna Parabrahma, the Supreme Absolute Truth? In reply, Shukadev Goswami said, Uktam Prastat. I have already explained this to you. Where? In the 7th, another 10th canto. But he has already explained where? 7th canto. There he explained to Prishit Maharaj, Kama Dvesha Vyasne Yat Yata Vatteshvare Mana Avisyata Vidam Hitva Babo Tadhyadim Gataha. That if persons like Kamsa, Shishupal, and others, they were absorbed in Krishna in the moods of hatred, in the moods of fear, in the moods of hostility, yet still they attain sadhagati, a transcendental destination, then what to speak of a person who is absorbed in Krishna with a faithful mood that they only want to love him and serve him, whether they know he is Bhagavan or not, even not knowing, but being absorbed in Krishna. Then they must get sadhagati, even if it's unfavorable. So if the mood is favorable, how much more superior their destination will be. So this calm is praying and it controls Krishna. It is the Phalsarup. It is the actual fruit of the rendering, following the process of devotional service. Here, Krishna is called Kamadev because he inspires praying in their heart. That means that every moment that they see him, every moment that they remember him, because he is doing Vardha, Vardha and Kamadeva, that implies that their love for Krishna is newer and newer at every moment. It means that Krishna is Kamadeva in their heart. In this world, all are affected by Kamadeva, and he increases their material desires. But in Braj, there is no action of Kamadev. There is only action of Krishna manifesting himself in the heart of the devotees and doing Uddipana. That means stimulating and intensifying their praying at every moment. Therefore Krishna is called Kamadev because he is Anansarup, the embodiment of all happiness, and he is always increasing that happiness for his devotees.
Sushmita Sri Mukhena. सुस्मित श्री मुखेना, इसके द्वारा अपने मंद मंद मधुर मुस्कान से अपने शारीरिक सौंदर्य से अप्राकृत सौंदर्य माधुर्य वैदिक इत्यादि के द्वारा जो देव प्रकटित हैं गोपियों के हृदय में काम की उद्दीपना करते हैं, उनके साथ में विलास करते हैं, वो कृष्ण की जय हो। यहाँ पर विशेष रूप में काम रूपा भक्ति के लिए बतलाया गया है। काम रूपा और संबंध रूपा दो प्रकार की भक्ति, संबंध रूपा नंद बाबा सखा इत्यादि, ये संबंध रूप गोपियों का संबंध के अतिरिक्त यह काम एक है। काम रूपा भक्ति गोपियों में है जो अपने संभोग के द्वारा कृष्ण के आनंद को वर्धन करना चाहती है। निखिल कृष्ण निखिल परम ऐश्वर्य और माधुर्य के शेष सीमा है, इसलिए वर्धयन कामदेवम वर्तमान वर्धयन, ये वर्तमान काल है, अभी भी निर्देश के द्वारा पूरे स्त्रीगण ब्रजपुर स्त्री के बिक्रियांचति इत्यादि वर्तमान क्रिया पर बिक्रियांचति, उसमें भी इदम च विष्णु बिक्रियांचति, उसमें भी वर्तमान काल है। कृष्ण की सभी लीलाएं वर्तमान है, गोपियों का कृष्ण के प्रति काम रूपा भक्ति भी वर्तमान है और उसी के द्वारा कृष्ण के साथ में वो विलास परायण होती है और कृष्ण भी विलास परायण होते हैं। इसलिए कृष्ण का ब्रज में विहार नित्य सूचित हुआ है, इसलिए भगवान ब्रज में सदा सर्वदा गोपियों के साथ में अपने रह लीला इत्यादि विलास इत्यादि को प्रकट किया करते हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं वर्धयन कामदेव उनकी जय हो। काल के
ठीक
है, इसमें जो 56 भोग लगे हैं ना, दो वर्ष में कल
था
उसका प्रसाद मैं इनकी महाराज जी को ताजी ताजी पहुँचा
दूँ। Ultimate limits of all sweetness and all beauty, and by this he inspires a calm in the hearts of the gopis. So bhakti is of two types, sambandharup and kamarup. Sambandharup refers to relationships of those in dasa sakya, vatsalya, such as Radha Maharaj and Madhya Shoda. But the word calm, Kamrupa Bhakti can only be applied to the gopis of Vrindavan. So here, Kamdeva indicates that Krishna is performing his vilas, his very beautiful sweet pastimes, in confidential rahakali, secret pastimes of intimate love with gopis in the quarters of Vrindavan. How? Srimad Bhagavatam said, Vikridayantiti. Vikridayantiti means even now. It's in the present, this verb is in the present tense. It's used in the present tense to indicate that even now, at this very moment, Krishna is performing his confidential pastimes with gopis in the coaches of Vrindavan. It is a hint about the nature of Krishna's leela. What is that? That is nature.